الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں, پیارے بھائیوں اور دوستوں, اللہ جل جلالہ کے نوالوں نے اپنے قدرت سے تنے تنہا بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی کے مشورے کے یہ پورے کائنات کے نظام کو تنے تنہا اللہ نے بنایا. اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. بھائی او بیٹا بھائی بیٹھ جاؤ. یہ اجتماع نکاحوں کے لیے نہیں کیا ہے کہ تم اس طریقے سے تماشے کر رہے ہو تو ہمارا پورا نظام بگاڑ رہا. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. خود بخود سمجھ جانا چاہیے. اب تعالی شانہوں نے اس پورے نظام کو اپنے قدرت سے بنایا ہے اور تنہ تنہا اس نے بنایا ہے, اور ہر چیز کو بنانے کے بعد اللہ کا اس پر کنٹرول ہے. بہت سی چیزیں دنیا میں بنتی ہیں لیکن بننے کے بعد انسان کے ہاتھ سے اس کا کنٹرول نکل جاتا ہے. گاڑی گاڑی والے نے بنائی لیکن اس کے بعد گاڑی کو گاہک لے گیا, اب اس کمپنی کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ برک کی جگہ اگر کلیچ دبا دے اور تو جو چاہے گا. لیکن یہ دنیا کا نظام جو ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد اس کی ہر چیز پر کنٹرول ہے. کوئی دنیا کی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. سورج اتنا بڑا ہے لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ایک منٹ نہیں, ایک سیکنڈ پہلے نہیں نکل سکتا. ایک سیکنڈ پہلے غروب نہیں ہو سکتا. ہوائیں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے مختصر آپ سمجھداروں کا مجمع ہے. اس بات کو سمجھے اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے رکھا ہے. مخلوقات بہت بنائی ہے اللہ نے, بہت مخلوقات ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 قسم کی مخلوقات ہیں, یعنی اس کے معنی ایک انسان ایک, فلاں جانور فلاں جانور فلاں جانور, ایسی 18 قسم کی مخلوقات ہیں, 18,000 قسم کی. اور ان مخلوقات میں ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں اور اربوں ایک ایک میں ہے. یہ ساری مخلوقات تنے تنہا حق تعالی شانہ کے کنٹرول میں. ان سب کو اللہ نے بنایا ہے. ماں کے پیٹ میں نہ ماں نے بنایا نہ باپ نے بنایا, اللہ نے بنایا ہے. دنیا میں اللہ اپنی مرضی سے لاتے. اس لیے میرے پیارے بھائیو, پورا نظام اللہ نے بنانے کے بعد اس انسان سے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھ, یہ سارا نظام میں نے تیرے لیے بنایا. زمین تیرے لیے, آسمان تیرے لیے, سورج تیرے لیے, چاند تیرے لیے, دریا تیرے لیے, پہاڑ تیرے لیے, جمادات تیرے لیے, نباتات تیرے لیے, حیوانات تیرے لیے, سب کچھ میں نے ایک تیرے لیے بنایا. لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا, اس لیے تیرا اکرام ہے, تیرا اعزاز ہے. دنیا کی کائنات کے کسی کے عمل پر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں. سارے ہاتھی اگر ہڑتال کر لیں اور تو کر نہیں سکتے, وہ فخر کیا اللہ نے. کچھ بھی کرے اس سے میرے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے. اے انسان, میں نے تجھے بنایا ہے اور تیرے نظام پر دنیا کی پوری تبدیلی آئے گی. ہوائیں تیرے چلنے پر چلے گی, فسادات تیری بنیاد پر ہوں گے, دنیا میں عدل تیری بنیاد پر قائم ہوگا, دنیا میں زلزلے تیری بنیاد پر آئیں گے, دنیا میں برکتیں تیری بنیاد پر آئیں گی. اے انسان, تیری بنیاد پر اس کائنات کے نظام کو میں چلاؤں. इसलिए कि तुझे मैंने अपने लिए बनाया ला यसाओनी अर्दी वला समाई वला किन यसाओनी कल्ब अब्दिल मोमिन कि ये जमीन और आसमान मुझे सहारा दे सकते इस मोमिन बंदे का दिल। इसलिए हफ्ता का शाहों ने इस दुनिया में इंसानों को जीने का तरीका दिया, जीने का तरीका दिया, और इसमें हफ्ता का शाहों ने इसके लिए सारी चीजों को छुपा दिया। जानवरों के लिए कोई तरीका नहीं, इंसान के लिए तरीका। अब इस इंसान को हक ताला शाहों ने सबसे पहले तो दुनिया और दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि कोई नबी अगर ना आवे तो अल्लाह की मखलूक के ऊपर गौर कर करके इसको अल्लाह को पहचानना चाहिए। अल्लाह ने अकल दी, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन इसको इंसान समझ अगर जरा से इस पर ध्यान दे समझ में आ जाए। रात दिन इसके मुशाहदे हो रहे हैं अपनी जात पर, वकी अनफ से को मफला खूब जरूर अपनी जात को देखे समझ आ जाए कि खाना खाता है, मुंह से खाता है, लुकमा उतरता है, पेट में जाता है, लेकिन दिमाग को जो जरूरत है वो दिमाग को मिलता है, हाथ को जो जरूरत है वो हाथ को मिलता है, पांव को जो जरूरत कौन पहुंचाना, एक एक चीज। लेकिन इसके बावजूद हफ्ता लाशान होने दुनिया में इंसानों को यह समझाया कि दुनिया में अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो और आखिरत की तैयारी करना चाहते हो और इसके साथ दुनिया में अमन चैन सुकून मोहब्बत बरकत आपस की मोहब्बत इस वक्त इनके साथ में रहते हो रखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर में एक नबी भेजता हूं, हर अमल मेरे लिए करो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। बस ये दो बुनियादी चीज। अगर मेरे लिए नहीं है तो तुम्हारा अमल जो है ये गैर मकबूल होगा, और मेरे नबी के तरीके पर नहीं है तो फिर वहां जहां तुम्हें आराम नजर आता था वहां से मुसीबत फूटेगी, इज्जत बाहर से नहीं आएगी, इज्जत तुम्हारे अंदर से निकलेगी। दुनिया की कौन ताकत है कि जो इंसान को जलील कर सके, कौन है, कौन है? वो तो अंदर से निकलती है, बाहर से नजर आती है। जिल्लत बाहर से नहीं आती, कोई जलील नहीं कर सकता, लेकिन अंदर के आमाल है इसकी वजह से बाहर से जिल्लत आती है। जिल्लत अंदर से इंसान के अंदर से आती है और इज्जत इंसान के अंदर से आती है। ये बुनियादी चीज। अब इसके लिए मैयार क्या है कि किस बात पर इज्जत मिलेगी और किस बात पर जिल्लत मिलेगी, इसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज फरमाया और पूरी दुनिया को यह बता दी कि तुम्हारा हर अमल जिस अमल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ये मोहर है, ये सिख। एक मिसाल दे दूं आपको, अक्सर पोस्ट पर आ रहा चलता क्या समझ है दाद कीमत तो एक पोस्ट कार्ड की एक रुपया, किसी समय से मुझे याद है वो चार आ रहे दस पैसे तो एक रुपये का है। आपके बेटे की शादी, आपने सोचा कि साहब शादी है मेरे बेटे की, आपने अंदर की कंकोत्री लिख करके बनाई 5000 की, उसके अंदर में जिस कवर में डाला उस कवर को आपने 5000 का बनाया, उस पर आपने एड्रेस लिखा और एड्रेस लिख करके यहां से वो खत आपने डाला पोस्ट बॉक्स में और कितने दूर के लिए डाला, दिल्ली के लिए, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का कोई सिक्का नहीं है, आपका अपना कवर है 5000 का है, क्या ये पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डालेगा तो ये जाएगा, बोलो, अरे बोलो, कितने का है, 10000। इसके मुकाबले में एक आदमी ने, उसका भाई कलकत्ता में रहता है, उसको एक पोस्ट कार्ड लिखा और उस पोस्ट कार्ड में खबर दी, दावत दी, जो लिखा था उसे एड्रेस सही किया और पोस्ट बॉक्स में डाला, ये जाएगा, है जाएगा जाएगा एक रुपए का है तो भी दस हजार का है तो वो नहीं जाए क्यों इसलिए कि दस हजार के रुपए वाले जो कवर है उसके ऊपर में गवर्नमेंट का सिक्का नहीं नहीं जा नहीं जाए कोई साहब हो अपने घर रहो गवर्नमेंट का सिक्का नहीं वो नहीं जाए और पोस्ट कार्ड जो एक रुपए का है इसके ऊपर बोलो सिक्का पर दुनिया की जिंदगी पूरी जो है चाहे इबादत हो चाहे मामलात हो चाहे माशरत हो चाहे अखलाक हो जिस चीज में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का है वो चलेगी वो कामयाब होगी वो बरकतें लाएगी वो खैर लाएगी वो मियां बीवी में मोहब्बतें लाएगी खानदानों में मोहब्बतें लाएगी हर वो तरीका चाहे खाना हो चाहे पीना हो चाहे सोना हो चाहे शादी हो चाहे तिजारत हो चाहे खेती हो चाहे मजदूरी हो हर वो तरीका जिस तरीके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर है वो तरीका आखिरत में मकबूल बनाएगा और दुनिया में बरकतें लाएगा और हर वो तरीका जिस तरीके में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहर नहीं है तो वो तरीका मुसीबतें लाएगा परेशानी लाएगा और टेंशन लाएगा और जिस जिस दफे के लिए उसको किया है वो नहीं आएगी अभी से लेकर मौत तक हर एक के लिए चाहे मैं हूं चाहे आप हैं चाहे कोई भी है जिसको भी अपना डालना है पोस्ट उसके ऊपर में मोहर होनी चाहिए कोई भी हो मालदार हो गरीब हो अमीर हो कारी साहब हो हाजी साहब हो मौली साहब हो मुफ्ती साहब हो कोई भी साहब हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर के बगैर का तरीका उसके लिए मुसीबत पड़े अब नजर यह आएगा कि साहब ये छूट लेता है ये करता है ये फुला करता है मर साहब हमको तो कोई तबाही नजर नहीं आई और मर साहब खूब खूब फल फूल रहा है एक बात समझ लो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है क्या कुरान पाक में है ये यसअलूनका अनिल रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए नबी मेरे लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि ये इंसान के अंदर में रूह जो है ये क्या चीज है इसलिए कि बॉडी तो बनती है दुनिया में रूह आती है ऊपर से भी रूह है क्या चीज ये लोग पूछे तो हफ्ता अचानक उसका जवाब दे रहे हैं कुल रूह मिन अम्र रब्बी हर इंसान के अंदर में जो जान है उसका दूसरे माना यह है कि वो अल्लाह का अम्र है इसलिए उसको कोई देख नहीं सकता कुछ नहीं लेकिन रूह है आंख देख रही रूह है जबान बोल रही रूह है हाथ हिल रहे रूह है पांव चल रहे रूह है दिमाग चल रहा है रूह है खाना हजम हो रहा है रूह है रूह है रूह है सारी चीजें बोल रही जब आदमी मरता है तो उसका कान चला जाता है उसका हाथ चला जाता है उसका पांव चला जाता है नहीं कोई चीज इसके अंदर से निकल गई जिसको हर आदमी अपनी जबान में कहता है इसकी जान निकल गई अब ये आंख किसी काम के नहीं ये हाथ किसी काम के नहीं कोई काम का पड़ा अगर इसको जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाया तो ठीक है नहीं पहुंचाया तो इसका बदन 5-6 घंटे के बाद फूलना शुरू होगा दुबला पतला आदमी था विटामिन की गोलियां खा खा कर थक गया लेकिन रूह निकल गई अब ये फूल रहा है जो समझदार होता है वो फौरन भाप लेता है खतरे को भाप लेता है फौरन लोगों को भाई जल्दी करो लाश पकड़ से जल्दी करो बाबा
24 घंटे हो गए तो भूल गया और जो नादान एक बच्चा छोटा सा घर में था वो मेरा बाप बहुत दिनों से चाहता था कि मैं मोटा बनूं। अब देखो मेरे बाप मोटा होता जा रहा है और बढ़ रहा है। इसका मुंह देखो, इसका हाथ देखो, इसकी उंगली देखो, इसकी ये देखो। नादान ये समझता है कि ये मोटा होता चला जा रहा, लेकिन समझदार ये समझ रहा है कि ये मोटापन नहीं है, ये किसी और चीज की निशानी है, इसलिए वो हरकत में आते हैं। और खसूस वो लोग जिनके जो किसी खानदान की वजह से बाइकाट या कोई हालात के होते हैं, उसको पता होता है क्या क्या रोज 24 घंटे उसे दफन न किया तो फिर कसाब ये फूले, ये फटेगा, फूल तो चुका अब ये फटेगा, इसके अंदर से बदबू आएगा और बदबू से घर वाले घर में नहीं रह सकेंगे, मोहल्ले वाले मोहल्ले में नहीं रह सकेंगे। जाहिर में तो नजर आता था ये होता है, क्या निकल गई, अल्लाह का अम्र निकल गया। इसी तरीके से ये कायनात में किसी के पास दुकान है, किसी के पास तिजारत है, किसी के पास कोई ज़राअत है, किसी के पास में क्या क्या, फिर घर में कोई खाना खाता है, कोई पीता है, कोई शादी करता है, कोई बीवी को कोई बहू को लाता है, कोई बहू को बेटी को रवाना करता है, ये सारे निजाम है। लेकिन इन सब की जान अल्लाह का हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जिस चीज में ये तरीका बाकी उसमें बरकत, उसमें बरकत। जाहिर में कुछ भी नजर आ रहा है दुबला पतला है, बरकत। उसके माल जो घर में आएगा वो हलाल माल बरकत लेकर आएगा। हर अमल उसकी जान क्या है, लोग समझते हैं कि दुकान की जान मूड़ी है, लोग समझते हैं कि दुकान की जान गरागी है, लोग समझते हैं कि दुकान की जान अच्छी खरीदी है। ये सारे जाहिर के आजा है, लेकिन इसकी रूह जो है वो इसमें अल्लाह का हुक्म है। ऐसे हर अमल में तिजारत करता है, अगर अल्लाह के नबी का अम्र, इस अल्लाह के नबी का तरीका इसमें मौजूद है, फिर चलेगी, कोई मसला नहीं। और आखिरत भी बनेगी, ताजर सदूक अमीन मां शोहदाय सिद्दीकी, अमानतदार तिजारत करने वाला। अल्लाह ये ताजिर कहते हैं इसको, ये नहीं कहते तहजीब पढ़ने वाला, तिजारत कर रहा है लेकिन अल्लाह के नबी पर के तरीके पर कर रहा है, दुनिया में बरकतों के साथ में। जब मरेगा तो सिद्दीक और शहीदों के साथ उठेगा, क्यों, उसके अंदर में उसकी तिजारत में जान मौजूद है। ऐसे हराम जिंदगी के मराहिल में एक चीज आती है, निकाह। इसलिए कि अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि हर एक की जरूरत है, बच्चा था दूध की जरूरत थी, खुदा ने पैदा कर दिया, बड़ा हुआ खाद्य रोटी की जरूरत थी, देते 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 जब एक उम्र हो गई तो उसको साथी की जरूरत है, ये अल्लाह की तरफ से। अब वो किसे कहते हैं निकाह, निकाह के मुताबिक एक आम तौर पर मुबादता है, आम तौर पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कहूं इस मुबादते। इसलिए कि वो समझते हैं कि निकाह ख्वाहिश पूरी करने की चीज, निकाह ख्वाहिश पूरी करने की चीज वो ये समझते हैं नादा, इसलिए फंस जाते हैं। इसलिए दुश्मन के हाथ में, दुश्मन कौन, हमारा शैतान, इससे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स, उसके हाथ में इस जहन की वजह से फंस जाती, इस अपनी का एक ख्वाहिश पूरा करने की चीज। हालांकि निकाह जो है ये ख्वाहिश पूरा करने की चीज नहीं है, निकाह इबादत है। जैसे नमाज इबादत, रोजा इबादत, ज़कात इबादत, हज इबादत, ऐसे निकाह इबादत है। अल्लाह के नबी ने निकाह के फजाए बयान किए और आम तौर पर यह देखा कि सब अपनी जिंदगी में आदमी सबसे लंबी कोई इबादत करता है तो ये निकाह। नमाज कुछ मिनटों की, रोजा कुछ घंटों का, हज कुछ दिनों का, लेकिन आम तौर पर आदमी जवानी में निकाह करता है तो बहुत के बॉर्डर पर ये इसकी इबादत पूरी हो, ये इबादत है। अब ये जहन जो नहीं है इसकी वजह से फंस रहा। जैसे नमाज, नमाज इबादत है तो इसमें अपना तरीका चलेगा, ए भाई बोलो नहीं चलेगा, क्यों? इबादत है, ऊपर से आया इसका तरीका। रोजा इबादत है, चाहे किसी मुल्क में 15 घंटे का रोजा हो और वहां यूरोप में चले जाओ तो वहां 22 घंटे का और 21 घंटे का हो, सब वही है, करना है, इबादत है। नमाज को जैसे हम नमाज, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरबस्तानी हो और चाहे तुर्किस्तानी हो और चाहे कहीं का भी हो, नमाज को इबादत है। पूरी दुनिया में जाओगे एक ही तरीका मिलेगा, वही रुको, वही कयाम, वही सज्दा, वही नमाज, सबका एक तरीका। हिंदुस्तान के सूबों में फिरो, सबका एक ही तरीका है। जिलों में फिरो, किसी शहर में जाओ, साहब ये सैयद है और ये पठान है और ये मुगल है और ये फुला है और ये फुला है, फुला है, लेकिन नमाज का सबका एक ही तरीका है। ऐसे निकाह का तरीका है, चूंकि इबादत है, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत छोटी छोटी चीजें निकाह की बुनियादी बनाकर रख दी, बता दी। जैसे बाप अपने बेटे को समझाता है, वैसे नबी ने अपने उम्मत को समझाया है। मंगनी करनी है कि कैसे लड़की से करोगे, दुनिया में मंगनी किस बुनियाद पर होती है, बहू बनाकर लाओगे किस बुनियाद पर लाओगे। अब अल्लाह के नबी समझाते हैं कि देखो, आमतौर पर निकाह जो होता है उसमें जो दुल्हन को पसंद किया जाता है तो कुछ लोग उसकी खूबसूरती को देखते हैं, कैसी भी हो खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ लोगों का इंतखाब होता है माल की बुनियाद पर, काली कलोनी हो माल लेके आनी चाहिए। कुछ लोगों की बुनियाद होती है कि हसब के हमारे हसब हमारे हमारी कदम की होनी चाहिए। तीन चीजें हुई और चौथी अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुछ लोग होते हैं कोई भी हो दीनदार होनी चाहिए। अब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को समझाते हैं कि देखो, दीन वाली बुलाई हो तो दुनिया में भी मजे करोगे, आखिरत में भी मजे करोगे। हसब टूट जाता है और माल खत्म हो जाता है और खुद से चला जाता है। ये तक मशवरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। अब निकाह में क्या फरमाया, निकाह के मौके पर हर आदमी, बल्कि दुआओं में है, बरकत की दुआएं देते हैं, बरकत की दुआएं देते हैं। बारकल्लाहु लक, बारकल्लाहु अलैक, जमा बैनकुम बिल खैर। बरकत, बरकत के माना जो आजकल अपनी जबानों पर हिंदी, अपनी उर्दू जबान जो है ना, ये उसका माफी जमीर अदा नहीं करती। उर्दू जबान में आमतौर पर यही होता है कि दो का खाना चार को चल गया, चार का खाना दस को चल गया, इसको बरकत। बरकत का असल मतलब ये है कि आप जो चीज को लाए हो, जिस जरूरत के लिए लाए हो, वो हाजत पूरी होनी चाहिए। और निकाह के मकासद में क्या कहा, ले तस्को नो हिलेगा। पूरी दुनिया का थका हर आदमी, पूरी दुनिया के टेंशनों से जब घर अपने घर में पहुंचा तो फिर उसे सुकून मिल जाता। निकाह में ये बरकत, इसको बरकत कहते हैं। फिर खुदा जिंदगियों में, औलाद में, माल में, सब में बरकत देते हैं, लेकिन इसकी चाबी क्या बताई, बरकत कहां से आएगी? निकाह तो हम सबका होगा, हर एक का वक्त आएगा, होगा। लेकिन अगर आज भी चाहता है कि मेरे निकाह में बरकत आए, मेरे बेटे और बेटी इनकी जिंदगी में बरकत आए, तो अल्लाह के नबी ने एक छोटी से हदीस में फरमाया, आजमुल निकाह है बरकतन ऐसरहु मौन। बड़ा ही बरकत वाला वो निकाह है कि जिसमें कम से कम खर्च किया जाए। जिसमें कम से कम खर्च किया जाए वो निकाह बरकत वाला है। अल्लाह के नबी ने खुद किए, अपने अपनी बेटियों के करवाए और वो सब कुछ, और दुनिया ने देख लिया। आज नफ्स और शैतान चुके एक बुनियाद पर के साथ हमारी मर्जी है, मैं पटेल हूं, मैं मुखी हूं, मैं चौधरी हूं, मैं फुला हूं, दुनिया को दिखा दूंगा कि बेटे का निकाह क्या होता है। जो कोई मंगनी में 2 करोड़ लगा रहा है, कोई इसमें लगा रहा है। अब जितना खर्च बढ़ता गया, बरकत हटती गई। अब जिंदगी में टेंशन क्यों? गैरों के तरीके हैं, जिनका कोई नहीं है उनके طریقے ہیں، راستے میں چلنے والوں کے طریقے ہیں، اس کو لیا ہے۔ میرے نبی نے بڑی محبت سے، ماں باپ سے زیادہ شفقت سے فرمایا تھا، اے بھیا، اے میرے امتی، اے میرے امتی، میں تیرے لیے بہت رویا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں کم خرچ، جتنا کم خرچ کرے گا تیرے بچے نکاح میں برکت آئے گی۔ لیکن باپ دنیا کو دکھانا ہے، اس کو ماں اس کو دنیا کو دکھانا ہے۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، معاف کریے گا، بیٹے کی زندگی کو برباد اس کا باپ کر رہا ہے، اس لیے کہ میرا نام دنیا میں ہو۔ بھگتتا تو غریب کو ہے، بے برکتی جو آئے گی بیوی شوہر کے لیے تورل بنے گی، اور وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کے لیے مصیبت بنے گا۔ یہ تو اس کو بھگتتا ہے، وہ تو نام اونچا کر کے گیا قبر میں۔ لوگوں نے خبر پڑے، ہو گیا، چار دن بعد ہو گئی، ختم ہو گیا۔ جو ماں اپنی بیٹی کے لیے جان دیتی ہے، یہ نادان اس نفس اور شیطان کی وجہ سے اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد کرتی جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی کسی چیز کو فرمائے اور دنیا میں وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اپنے دلہا بچوں سے عام طور پر کہتا ہوں، نکاح کے موقع پر بیٹا سنبھل کر رہی ہو، بیٹا سنبھل کر رہی ہو، نکاح کا نشہ لوگ اس نشے میں برباد کر دیتے ہیں، اور یہ تمہاری ابتدا جو ہے، یہ تمہاری زندگی کے آخر تک اثر ڈالے۔ اسے سمجھو، نکاح بار بار نہیں ہوتا، یہ چیز بار بار بھی آتی، تو اس میں تم سنت کو سامنے رکھو، پھر دیکھو اپنی زندگیوں میں کیا نکاح۔ وقت بہت کم ہے، نکاح زیادہ ہے، بہت کچھ مجھے آپ سے مذاکرہ کرنا تھا۔ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، میرے دوستوں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، ہم آپ کی ایک ایک آدھی کپ چائے بھی چاہتے ہم آپ سے۔ لیکن یہ سارے جو پیچھے پیچھے علماء ساتھی سب کچھ پڑ رہا ہے، دین کو لاؤ، دین آئے گا کوئی ہمارا بگاڑ دے سکتا۔ اور ایک بات آخر میں ایک بات کہہ دوں، بہت کل سے دل پریشان ہے میرا، ہمارا گوترا، ہمارا پنچ پہل، ہمارا دابود، ہمارا جالود، ہمارا کالول، جو دین کے لیے جان و مال لگانے والے لوگ، لیکن یہاں جیسے ہم کاٹیاواڑ میں سن کر کے آئے ہیں، ویسے یہاں سنے تو پھر کیا ہوگا؟ ماں جو چیزیں بنجر علاقوں میں ہم سن کر آئے، وہ یہاں ہم سنے تو کیا ہوگا ہمارا؟ کہ یہاں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ سو فیصد نمازی، کل ساری کارگزاریاں سنی تو کہیں 10%، کہیں 15%، کہیں 25%۔ اے بھائی بھائی بھائی، کیا ہے کیا ہے؟ تم تو اللہ کے، اور جانتے ہو نماز کا چھوڑنا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا ہوگا اس محلے کا جس محلے کے 20% نماز کی مسجد میں ہے اور 80% ایک ساتھ کھلا کے بڑے گناہ کو کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ اس لیے آج یہ میرا پورا مجمع نمازیوں کا مجمع ہے، لیکن یہ طے کرو کہ ہمیں محنت کر کے اپنے تبلیغ والوں پر مت چھوڑو، علماء پر مت چھوڑو، علماء بھی حرکت پہ آؤ، دعوت کے ساتھی بھی حرکت پہ آؤ، اور میرے نوجوان ساتھی جو اپنی جان و مال کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں، حرکت پہ آؤ، حرکت پہ آؤ، اور شعبان کی 15 تاریخ کے آنے سے پہلے پہلے اپنی مسجدوں میں 100% نمازی بنا دو۔ اب کے بار کے شعبان میں یہاں سے وہ رپورٹ جائے اوپر کہ اللہ کی رحمت بہنے لگے اور اللہ اس امت کو سنبھال لے۔ کرتے ہو؟ کرو گے؟ کون 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 طے کرتا ہے؟ میرے محلے کے ایک آدمی کو میں نماز پڑھاؤں گا، اللہ آپ کی زندگی کا برکت دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام بھائی ایک بات پورے مجمع سے کہہ دی ہے کہ جن حضرات کا نکاح ہو جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کام ہو گیا اب میں چلو وہ بیٹھے رہے جو نکاح کے ساتھی اور ہیں ادھر ادھر جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی بہت بہترین بات تو یہ ہے کہ نکاح میں آپ شریک ہو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کے 6 حق ہیں اس میں ایک حق یہ ہے کہ اس کی خوشی میں لیکن ضرورت ہے کوئی مجبوری ہے تو بغیر شور مچائے بازو کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ چلے جائے باقی مجمع میں انتشار نہ کریں اور اطمینان سے بیٹھے رہیں اور بچوں کو دعائیں دیتے رہیں